आज हमारे सम्मुख प्रतिभा बहन जी हैं, जिनका टॉपिक है कल्प वृक्ष। बीके प्रतिभा बहन, ब्रह्म कुमारी प्रतिभा बहन 1995 से ब्रह्म कुमारी के ईश्वरीय ज्ञान में है तथा 2002 से अपना पूर्ण जीवन रूप भावा के ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं। उन्होंने मुंबई के विश्वविद्यालय में एमए तथा एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग की उपाधि प्राप्त की है। वर्तमान में वे ब्रह्मा कुमारी विलेपाला मुंबई सेवा केंद्र पर राजयोग की शिक्षिका के रूप में अपनी आध्यात्मिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। साथ ही वे ब्रह्मा कुमारी द्वारा संचालित BSESMG हॉस्पिटल अंधेरी मुंबई में हॉनररी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में निस्वार्थ भाव से सेवाएं दे रहे हैं। वे बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के सक्रिय फैकल्टी रूप में तथा विभिन्न औद्योगिक और व्यावसायिक, शैक्षणिक और सामाजिक संस्थानों में राजयोग, मेडिटेशन, व्यक्तित्व विकास, तनाव प्रबंधक एवं आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषयों पर सेमिनार, कार्यशालाएं, ध्यान शिविर आदि आयोजित करते रहते हैं। तो सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी प्रतिभा बहन का टॉपिक है कल्प वृक्ष के बारे में। ओम शांति।
थैंक यू दीना बहन।
ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड है, आगे रहेगी फॉरएवर, पक्का। नॉट ओनली मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, है ना, हर चीज क्या रहेगी हमारी, गुड, बहुत 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 अच्छी, राइट। चलो ये सीट आगे किसके लिए रखे, आ सकते हैं आगे सभी, आगे आ जाइए, जो पीछे से आएंगे बैठ जाएंगे, बाकी आगे आ जाइए सब लोग। चलो अब लास्ट 3-4 दिन से आप सभी सुन रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, है ना, उनके साथ कनेक्शन कैसे जोड़ना है, वो भी हमने देख लिया। बैठ जाइए, सब सेटल हो जाइए, फिर हम शुरू करते हैं। कल आपने वर्ल्ड ड्रामा सीक्रेट कि ये ड्रामा कैसे हूबहू रिपीट होता है, कितने युग, अब तक हमको 4 युग पता थे, कल पता चला 5वां, जो गुप्त पुरुषोत्तम मास ये साल बनाया ना, तो ये 5वां गुप्त युग है जहां पूरे सृष्टि का परिवर्तन हो रहा है। तो अभी सब रिलैक्स होके बैठे, हाथ में अगर मोबाइल आदि जो भी है थोड़ा रिलैक्स होके बैठे एंड आंखें बंद कीजिए, एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, इनहेल आउट, 3 बार कीजिए। शुद्ध हवा लीजिए और अंदर जो भी निगेटिव या कुछ भी है वो बाहर निकाले, थोड़ा बहुत बचा अगर हो तो यहां पूरा वो निकाल के जा रहा है। और एक साथ सब बहुत प्यार से ओम की ध्वनि करेंगे ताकि हमारा माइंड अगर इधर उधर है तो हम अपने ऊपर उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ओके, ओ पूरा फीलिंग के साथ कि मैं शांत स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, मैं स्वच्छ निर्मल पावन हूं, पवित्र हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। इन 4 दिनों में जो समझ मिली उसको सिर्फ बुद्धि तक नहीं लेकिन प्रैक्टिकल हम अपने जीवन में उतारने वाले, ठीक है, आंखें खोल सकते हैं। कल बहुत सुंदर कहानी सुनी कि मैं आत्मा परम धाम थी, फिर नीचे आई। बहुत सुंदर युग में हमने अपना जन्म लिया जहां दुख का कोई नामो निशान तक नहीं था, और ये चक्र फिरते फिरते हम सतो रजो तमो में आ गए एंड वापस सृष्टि का परिवर्तन, तो ये साइकिल चलता ही रहा। आज वही चीज हम एक वृक्ष के रूप में देखेंगे, और ये वृक्ष कौन सा है? मनुष्य सृष्टि रूपी ये झाड़। कि कैसे ये शुरुआत हुई थी, क्योंकि जब वृक्ष लगाते हैं, कोई भी पेड़ लगाते हैं, तो बीज कैसा होता है? बीज कैसा होता है? बहुत छोटा, कभी कभी तो हाथ में भी नहीं आता, फिसल जाता, इतना छोटा होता है। और जब उसको नीचे लगाया जाता है, उसके बाद बीज दिखाई देता है नहीं ना, फिर उसके रूट है ना, वो जड़े जो होते हैं वो मजबूत होती है, फिर धीरे धीरे वृक्ष बढ़ता है और फिर विस्तार होता है, फिर हरा भरा एक एक ताल तालियां, फिर एक एक पत्ते निकलते हैं। लेकिन शास्त्रों में एक कल्प वृक्ष की बात आती है। आप सभी ने अगर गीता सुनी हो तो उसमें एक लिखा है कि एक कल्प वृक्ष, अर्थात उधर नाम दिया है ऊर्ध्व मूल, अर्थात उल्टा वृक्ष। जनरली बीच कहाँ होता है? नीचे, और ये ऊपर वृक्ष। लेकिन ये जो कहा है ना कहानी, कि ऐसा ऊर्ध्व मूल है जिसके नीचे बैठने से हम सब की, मनुष्य की जितनी भी कामना है, जो भी मनोकामना है, वो पूर्ण हो जाती है। अब ये सोचने की बात है कि अगर ऐसा वृक्ष होता तो, अगर ऐसा वृक्ष होता तो सोचो क्या होता। ये ऊर्ध्व मूल गीता में लिखा है, वही हम बता रहे हैं कि ऐसा वृक्ष है कि नीचे बैठो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। ये चित्र में जो आप देख रहे हैं ना, हर जगह पे आपको ये मिलेगा, ऊर्ध्व मूल। अर्थात अगर ऐसा वृक्ष होता तो मनुष्य सारे वहां जाके बैठ जाते, और ये कामकाज तो विपरीत ही रीति से चलता। तो ये कौन सा ऐसा वृक्ष है जहां हमको बैठने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है? तो ये है कल्प वृक्ष, मनुष्य सृष्टि का कल्प वृक्ष। कि इसका बीज एकदम पॉइंट ऑफ लाइट, कि जैसे कहते ना कि जैसा बीज वैसे झाड़। अब ध्यान से सुनना, आज की जो ये कहानी है वो धर्मों के ऊपर। कल हमने देखा कि कैसे हमने सत्व रजो तमो में गए, आज हम देखेंगे कि कैसे हम थे, कहां अधर्म बढ़ा और कहां अब वापस सत्य धर्म की स्थापना हो रही है। तो यहां जो ये कल्प वृक्ष है, इसको कहते हैं मनुष्य सृष्टि का ये झाड़। बीज नीचे होता है, लेकिन मनुष्य का जो मेन, जो आप सभी ने दूसरे दिन देखा कि हम सब आत्माओं का पिता, जिसे हम परम पिता कहते हैं, जिसके थ्रू हम निकले हैं, क्योंकि वो पिता, उसके बाद हम उसके बच्चे, तो वो कहां है? कहां है? कहां पे? परम धाम। ऊपर वो है और नीचे ये सारी सृष्टि फैली हुई, इसलिए इसको क्या कहा? कल्प वृक्ष। वहां लिखा है उल्टा वृक्ष, ऊर्ध्वमूल, ये उर्दू वर्ड वहां पे यूज किया है संस्कृत। और यहां फिर हम अगर प्रैक्टिकल देखें तो ऊपर परमात्मा है और नीचे ये सारी सृष्टि फैली हुई है। तो अब हम देखते हैं कि कल जो हमने देखा सृष्टि चक्र के थ्रू, कि कैसे मैं आत्मा ऊपर से नीचे आई, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और ये छोटा सा युग आता है एक संगम का युग। तो जब शुरुआत हुई थी तो यहां सब परमात्मा ने, जैसे आप नीचे देख रहे हो, सबसे नीचे कल्प वृक्ष में अगर नीचे देखो तो जब परमात्मा ने ये नया बीज लगाया, तो यहां जो संगम युग है, जो छोटा सा युग है, यहां त्याग और तपस्या। क्या? त्याग और तपस्या। अच्छा, त्याग क्या करवा रहे परमात्मा हमसे? आप चार दिन से सुन रहे हो कि क्या छोड़ना है। त्याग मतलब क्या? छोड़ना है। कुछ मांगा उसने आपसे कि पैसा दो, आपका ये दो वो दो। अब सोचो कि भगवान को मैं दे दे के क्या दे सकते हैं। एक तरफ हम क्या कहते हैं, दिया तो उसी ने है सब कुछ, हमारा तो कुछ भी नहीं है। क्या कहा हमने? उसने ही दिया, तो अब मैं क्या दू? तो हमारे अंदर की बुराइयां। त्याग उसने क्या कहा कि जो हमारे अवगुण थे, हमारी कमजोरियां थी, वो मुझे क्या करना है, त्याग, तपस्या। आज आप सभी भगवान को पहचान लिया ये तीन दिन में कि सबका मालिक एक, गीत सुना ना सभी ने, फिर भी बंटवारे हैं, फिर भी झगड़ रहे हैं, फिर भी आपस में कहीं ना कहीं वो हमारा मन मुटाव हो जाता है। क्यों क्यों अभी भी उस बॉडी कॉन्शियस में बैठे हैं। अच्छा सभी मेरे को बताइए कि किसने किसने भगवान को पहचान लिया और किसको किसको निश्चय कि भगवान एक ही है, निराकार परमपिता परमात्मा शिव। बाकी सबको नहीं है हा? अच्छा कोई बात नहीं, जब सेंटर पे जाएंगे और डिटेल में जानना कि कैसे सर्वधर्म आत्माओं का पिता उस दिन जब राधिका बहन करा रहे थे कि वो एक ही है। अल्टीमेटली हम उसको एक ही को मानते हैं, सिर्फ अलग अलग नामों से उसको पुकारा है, किसी ने कहा प्रभु, किसी ने कहा ईश्वर, किसी ने कहा परमात्मा, किसी ने कहा अल्लाह, किसी ने कहा गॉड, अलग अलग भाषाओं के हिसाब से हमने उसको पुकारा। तो तपस्या माना जब परमात्मा इस धरती पर आते हैं, हमसे जो अवगुणों का त्याग कराते हैं, और तपस्या उनके डायरेक्शन, उन्होंने जो डायरेक्शन दिए है उस अनुसार जब हम चलते हैं तो उस पेड़ के जो रूट है वो इस समय वो मजबूत कराते हैं, और फिर हम देखेंगे कि झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहला आता है सतयुग एंड त्रेतायुग। कल आपने देखा ये दुनिया बहुत सुंदर, तो यहाँ की विशेषताएं ये मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आज है हम अपने आप को चेक करें कि क्या वो मर्यादाएं हैं, हम अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, और कहीं अगर हम कहते थोड़ा मर्यादा में रहो, हमको अपनी लाइफ जीने दो, ठीक है जीने देते हम आपकी लाइफ ना, लेकिन इससे हम कितने नुकसान में जाते। तो मर्यादा कौन सी कि जो विकारों के वशीभूत हम हो गए हैं, जब हमारी मर्यादा के अंदर थे तो कोई भी प्रकार का दुख नहीं था, न टेंशन था, न चिड़चिड़ापन था, न कोई प्रकार का भय डर था, हम तब मर्यादा में थे, तभी की बात है। सतयुग सत्ययुग अर्थात यहां जो आत्माएं थी वो बहुत सुखी संपन्न थी, इसीलिए सूर्य नारायण कहते हैं। सूर्य चंद्र नारायण चंद्र ऐसा कभी कहा है नहीं, क्या कहते हैं, सूर्य नारायण कहते हैं। तो यहां अगर आप देखेंगे कृष्ण जो था पहला प्रिंस, वही बड़ा होकर जब राजगद्दी पर बैठते हैं तो उनको कहते हैं नारायण। आपने एक भजन सुना होगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तो ये पूरे उसके जीवन लीला के ऊपर है, छोटा है, बाल है कृष्ण का, और जब वो राज गद्दी पर बैठ रहा है तो उसको क्या कहा, नारायण। तो नारायण या कृष्ण कोई अलग नहीं है। आपको कल एक क्वेश्चन उठा होगा कि आपने कहा कि कृष्ण जहाँ राधे है, जहाँ राम सीता है, वहां कोई प्रकार का दुख नहीं। बार बार हम एक ही चीज कह रहे हैं कि ये बहुत सुंदर दुनिया में थे, और जब हम पढ़ते हैं तो वहां कौन दिखाई देते हैं, कंस है, रावण है, ऐसे दुख देने वाले थे, तो आप कैसे कह रहे हो कि वहां कोई दुख नहीं था। आज हम वो देखेंगे कि ये कौन है रावण, कौन है कंस। लेकिन परमात्मा ने जो कहा कि जब शुरुआत हुई तो वहां जो पहला प्रिंस था वो कौन था, जो पहली आत्मा वो थी कृष्ण, वही बड़े होकर ये, इसलिए विष्णु चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। तो विष्णु को चार हाथ दिखाए हैं। अब आप थोड़ा इमेजिन कीजिए कि हमको अगर एक हाथ इधर एक्स्ट्रा आ जाए, चार हाथ की तो बात ही नहीं, मैं तीसरे हाथ की बात कर रही हूं, एक हाथ एक्स्ट्रा आ जाए क्या होगा, क्या होगा, एबनॉर्मल कहेंगे कि ये एबनॉर्मल है कहेंगे, अच्छा लगेगा ऐसे, हमने तो कितने हजार भुजाएं दिखा दी, आठ आठ हाथ है ना, शक्तियों को दिखाए हैं। तो ये क्या है, भुजाएं है, हालांकि कोई ऐसे एक्स्ट्रा हाथ नहीं होते, कहते ना ये मेरी भुजाएं है, जैसे कहते ना हमारे घर में। तो ये विष्णु माना वहां पे दो हाथ लक्ष्मी के, दो हाथ नारायण के, तो ये पवित्र गृहस्थ आश्रम की निशानी है सतयुग। अर्थात वहां आज हम घर को आश्रम कह सकते हैं, घर को मंदिर कहा जाता है, लेकिन है, बोलो है, तो मंदिर वहां जहां सुख शांति मिले, लेकिन आज घर में क्या मिल रहा है? दुख, चिड़चिड़ापन, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। ये आज ठीक है, कुछ फंक्शन है तो बहुत अच्छा चल रहा है, कल कुछ और हो जाता है तो वही दुख का वातावरण। लेकिन सतयुग में जहां वहां पे गृहस्थ था वो भी बहुत सुखी संपन्न है, इसलिए विष्णु चतुर्भुज दिखाया है कि वह संपन्न संपूर्ण स्टेज है, कि वहां कोई प्रकार की कमी नहीं थी। तो सूरज जैसे भरपूर होता है तो वैसे यहाँ जो भी आत्माएं थे, सूर्य नारायण कहा ना, तो भरपूर थे, कोई चीज की वहां कमी नहीं थी। धीरे धीरे झाड़ बढ़ता गया, आए त्रेता युग में। तो वहां त्रेता युग में क्या कहा? रामचंद्र। क्या कहा? रामचंद्र। तो चंद्र की कलाएं क्या होती है? कम होती है ना, कलाएं बढ़ती है कम होती है। तो यहाँ सतयुग में हम जब थे तो वहां 16 कला संपन्न थे, एंड जब हम त्रेता में गए तो यहाँ 2 कला हमारी कम हो गई, तो वहां 14, लेकिन था वो भी सुखी संपन्न, क्योंकि झाड़ बढ़ रहा है। कल भी देखा कि सृष्टि का जब नव निर्माण होता है तो जैसे शुरू होता है कोई भी चीज नई की नई रहती नहीं है। आज हम खरीदे कल बेचो, भाव कम हो जाता है। तो सृष्टि भी जब परिवर्तन होता है, अब जब नए से शुरुआत होती तो धीरे धीरे हमारे मूल्य कम हो जाते हैं। त्रेता में आते आते हम 2 कला कम, लेकिन ये भी बहुत सुखी संपन्न। तो यहाँ क्या था? राम सीता का राज्य, रामचंद्र कहा गया ना, तो 2 कला कम। इसलिए धनुष बाण राम के हाथ में दिखाते हैं और कृष्ण के हाथ में क्या दिखाई देता है? बांसुरी। तो रामचंद्र माना उसको लास्ट तक लड़ते रहना पड़ा था, लेकिन ऊंच पद जरूर वो पा गया। तो ये जो कहानी है, ये हमारी ही कहानी कि हम ऐसी दुनिया में जहां बहुत सुंदर दुनिया थी, जहां हम बहुत अच्छे से खेल पाल करते थे, बहुत सुंदर सदा बहार मौसम था, जहां कोई कमी नहीं थी, ऐसी ये दुनिया थी सतयुग त्रेता युग। समय बढ़ता गया, झाड़ बढ़ता जा रहा था। अब यहाँ जो आप देखेंगे, झाड़ जो है सतयुग त्रेता तक एक भी टाली निकली है? पूरा तना एक साथ दिख रहा है, एक भी टाली निकली हुई दिख रही है? नहीं। अब हम आगे देखते हैं, फिर द्वापर युग में एक एक टाली निकलना शुरू करते हैं। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं झाड़ में कि सतयुग त्रेता तक एक भी टाली नहीं है, लेकिन शुरू हुआ कहाँ पे? द्वापर से। तो उसको हम क्लोज करके देखते हैं कि जैसे द्वापर में हम जाते हैं तो वहां क्या हुआ? देवताएं वाम मार्ग में चले गए। वाम अर्थात उल्टा, जहां हम सीधे रास्ते पे थे हमने मर्यादा को क्रॉस कर लिया, तो वहां क्या हुआ? हम बॉडी कॉन्शियस पे आ गए। तो यहाँ द्वापर युग 2 प्रहर निकलते हैं, एक तरफ धर्मों की स्थापना और एक तरफ होता है भक्ति शुरू होती है। यहाँ हम सुखी थे क्योंकि पवित्र थे, ये हमेशा याद रखो। जहाँ स्वच्छता है, जहाँ निर्मलता है, जहाँ मन शुद्ध है, वहाँ बहुत सुखी रहेंगे। और जहाँ हमारे अंदर थोड़ा भी मिलावट आ जाता है, थोड़ा भी किसी के प्रति दुख या निगेटिविटी या वेस्ट हमने डाला, आप सुखी रह पाते हो? सुखी रह पाते हो? हमने हम सीखा यहाँ पे कि हर एक के प्रति अच्छा सोचो, हर एक के प्रति ये करो, लेकिन थोड़ा किसी ने कुछ बोल दिया, क्या होता है? क्या होता है? माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। फिर आपके सामने कितनी भी अच्छी चीजें हो, कुछ भी हो, आप क्या कहते हैं? मेरा मन नहीं लग रहा है। कितनी अच्छी भी चीजें आपको खाने के, तो मेरा खाने का मन नहीं है, क्योंकि आप विपरीत इस पे चले गए। हालांकि पवित्रता थी, शुद्धता थी, सतयुग त्रेता में कोई मतभेद वैर नहीं था, क्योंकि वहां था एक ही धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म। वहां अनेक धर्म नहीं थे, और आज क्या हो गया है? अनेकता हो गई। क्यों? क्योंकि द्वापर में जैसे हम दुखी हो जाते, पवित्रता चली गई, हम दुख चिड़चिड़ापन टेंशन में आ गए, और जहां भय होता है, जहां डर होता है, फिर हमने भगवान को पुकारना शुरू किया कि हे प्रभु आओ, आकर हमें पवित्र बनाओ, आकर हमें सुख दो, आकर हमें शांति दो, हमने उससे मांगना शुरू किया। इसलिए देखा था ना स्वस्तिका का हाथ, उस दिन शिवानी बहन ने बोला हाथ ऐसा कब करते हैं? मांगते समय। तो द्वापर में हमने क्या किया, मांगना शुरू कर दिया। तो यहाँ क्या हुआ, एक तरफ धर्म स्थापन हुए। तो धर्म भी क्यों स्थापन हुए थे, क्योंकि उस समय जिस चीज की कमी थी वो चीज पूर्ण करने के लिए वो धर्म स्थापक आए और उन्होंने अपना धर्म स्थापन किया। तो एक तरफ जब दुख शुरू हुआ, उथल पुथल हुआ था उस समय, और जब दुख शुरू हुआ तो हमने भगवान तो पुकारना तो शुरू किया, लेकिन सबसे पहले ताली निकली थी, अब्राहम आए और उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। और जब वो देख रहे ताली निकलती है, फिर बाद में धीरे धीरे उसकी छोटी छोटी और तालियां और पत्ते निकलते, तो उस धर्म की आत्माएं उस समय नीचे आना शुरू कर दिया। तो उन्होंने धर्म स्थापन किया, उसके बाद बुद्ध जी आए, गौतम बुद्ध, उन्होंने बौद्ध धर्म स्थापन किया, फिर क्राइस्ट आए, उन्होंने अपना कृष्ण धर्म स्थापन किया। तो एक के बाद एक ऐसे धर्म स्थापन होना शुरू हुआ। हुए क्यों थे ये धर्म स्थापन, हुए क्यों थे? और जैसे धर्म स्थापन हुए, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत देखकर अपने धर्म स्थापन किए, लेकिन धीरे धीरे अगर जाए आगे तो जैसे कलयुग आया, तो कलयुग में उस धर्म में भी बहुत सारी अनेकता, मोहम्मद गजनवी आए, उसके बाद नानक जी आए, शंकराचार्य आए, तो एक एक आके अपने अपने धर्म स्थापन किए। समाज में जिस चीज की कमी थी उस चीज को भरने के लिए उन्होंने अपना धर्म स्थापन किया। इब्राहिम ने देखा यहाँ तो गुड़ियों की पूजा कर रहे हैं, उनकी कहानी आपने सुनी होगी कि उसके फादर गांव के मुखिया थे, उन्होंने उस समय मूर्तियों की पूजा करते थे। तो उन्होंने क्या किया, इब्राहिम को ये पसंद नहीं था कि ये सब क्यों कर रहे हैं। एक बार गांव में कुछ फंक्शन था, सब बाहर थे, तो इन्होंने क्या किया, किसी का गर्दन काट के रखा, किसी का हाथ काटा, किसी का पांव काटा। और जैसे घर पे आए तो पिताजी समझ गए ये काम होगा इब्राहिम का है। उन्होंने पूछा ये क्या किया, उन्होंने आंसर क्या दिया होगा, ये आपस में लड़े और टूट गए। तो उस समय आज भी अगर किसी मूर्ति का खंडन करते हैं तो बहुत हंगामा हो जाता है। तो उस समय उन्होंने बहुत सारे दास दासियां लोग और कुछ खजाना देके उसको निकाल दिया वहां से, और आगे चल के उन्होंने फिर इस्लाम धर्म की स्थापना किया। और उनका एक ही सिद्धांत था, किसी में ये नहीं कहा था कि तुम अपने धर्म को आगे करने के लिए आपस में लड़ो या मरो। तो हर एक का यही था। गौतम बुद्ध जी, उन्होंने भी क्या कहा, प्रेम करुणा दया, इसी को सिद्धांत लेकर उन्होंने देखा कि कैसे आपस में लड़ रहे, एक दूसरे के ऊपर दया नहीं है, करुणा नहीं, तो यही सिद्धांत लेकर अपना धर्म स्थापन किया। आज जीसस क्राइस्ट का भी आप देखेंगे, सूली पे चढ़ाए तो भी उन्होंने क्या थे उनके आखिरी वर्ड, भगवान इनको पता नहीं कि ये क्या कर रहे है, प्लीज इनको माफ करो। उन्होंने ये नहीं सिखाया कि मुझे सूली पे चढ़ाए तो इन लोगों को भी आप सुलीप पे चला, उन्होंने एक ही सिखाया कि प्रेम से रहो, प्रेम से उस परमात्मा को याद करो। शंकराचार्य जी जब आए तो उन्होंने देखा कि राजा तथा प्रजा सारे भोग विलास में डूबे हुए हैं, और ऐसा ही चलता जाएगा तो ये बहुत भ्रष्टाचार पापाचारी बन जाएंगे। तो उन्होंने सन्यास धर्म की स्थापना की, भारत को अति पतितपना को ये करने के लिए शंकराचार्य जी का हाथ है कि बहुत पतित होने से उन्होंने बचाया, पवित्र। उन्होंने कहा कि घर गृहस्थ में रहकर हम ये नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने सन्यास धर्म का ये स्थापना की। नानक जी भी आए, उन्होंने भी एको ओंकार सतनाम अकाल, तो उन्होंने भी अपने अपने सिद्धांत देकर, हरेक आए अपने अपने अच्छे अच्छे सिद्धांत। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक में भी अनेकता आ गई। जैसे मोहम्मद जी आए, उन्होंने मुस्लिम धर्म स्थापन किया, लेकिन उसमें भी ये इस्लाम धर्म से ही निकले हुए हैं, सिया अलग अलग सोनी ऐसे अलग अलग उनके निकले हैं। अब क्राइस्ट में भी देखो, कोई कैथलिक है, कोई रोम है, कोई मेरी को मानता है, कोई क्राइस्ट को मानता है, तो एक में भी अनेकता। तो कलयुग में आते आते क्या हो गया, जड़ जड़ी भूत हो गया ये झाड़, क्योंकि अनेक ताल तालियां, अनेक मठ पंथ समाज सोसाइटी, अनेकता ऐसे बढ़ती गई। अब ये हो गया सारे धर्मों के बारे में, हर एक धर्म का आपने देख लिया और हर एक धर्म का धर्म स्थापक भी पता है। आज अगर कहो कि क्राइस्ट में कहा है कि क्रिश्चियन में कि क्राइस्ट के जन्म के 3000 वर्ष पहले ये भारत हेवन था। उसके पहले का नहीं पता है, लेकिन उसके बाद के गणना शुरू हुई तो 3000, आज कितने हो गए क्राइस्ट को आके 2000 हो गए, उसके पहले का 3000 हो गया, 5000 वर्ष का ये कल्प वृक्ष हो गया। क्लियर हुआ इसमें? तो ये 5000 वर्ष का तो हो गया। अब इन सब धर्म स्थापक पता है कब आए, कैसे धर्म स्थापन किया, सिद्धांत भी। आज हम कहते हैं हम हिंदू है, धर्म स्थापक कौन है, कहां से निकला है, कोई नॉलेज है इसका, कोई आइडिया है इसके? अगर बहुत बड़े महान पंडित या तपस्वी को भी पूछेंगे ना ये धर्म कहां से निकला है, तो वो क्या कहते हैं, नीति नीति परंपरा से है, नहीं पता है किसी को भी ये धर्म कहां से निकला है। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म जब सतयुग और त्रेता युग में था तब हम उस धर्म के कहलाते थे। आज हम आदि सनातन देवी देवता भी कह सकते हैं अपने आप को, कह सकते हैं क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी नहीं है, वो गुण नहीं है हमारे अंदर। तो ये देवी देवताएं जब गुण चले जाते तब हमने अपने आप को आर्य कहलाना शुरू कर दिया। आर्य समाज में भी हमारे कुछ अच्छे सिद्धांत है, जब वो भी नहीं रहे तो द्वापर युग में क्या होता है, जब उथल पुथल होता है ना त्रेता और द्वापर के बीच में, कहते हैं ना कि सोने की द्वारिका क्या हो गई, समुद्र में डूब गई, नीचे चली गए। और फिर हमारी जो प्राचीन संस्कृति है खोजना शुरू करते हैं जो संशोधक है, तो कहा कि सिंध में अगर पूरब साइड जाओ तो पूरी वो संस्कृति मिलती है। तो वहां सिंध में सिंधी में स को ह बोलते हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, हिंदू, क्या कर दिया, हिंदू। तो कोई हिंदू हमारा धर्म नहीं है, हिंदू ये सिर्फ हमने भारत जो इंडस नदी के कारण इंडिया, और इंडिया को क्या कहा, हिंदुस्तान। जैसे जापान के रहवासी जापानीज होते हैं, अमेरिका के जो रहवासी वो अमेरिकन कहलाते हैं। अब अमेरिकन जापानीज चाइनीज ये धर्म या वहां के रहवासी है, रहवासी। वैसे हिंदुस्तान के हमने अपने आप को क्या कहा, हिंदू। तो परमात्मा याद दिला रहे हैं, परमात्मा आके कहते कि वास्तव में तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के। वो ऐसा धर्म था जो सनातन सात्विक धर्म था, जहां आत्मा बहुत प्योर थी, 16 कला संपन्न थी, पवित्र थी, निर्मल थी, पावन थी। आज हम अपने आप को चेक करें कि कितनी सारी कमियां हैं जिसको मुझे वो निकालनी बाकी है, राइट बात है? तो अब ये धर्म का आ जाता है बीच में। तो परमात्मा जब ये गीता ज्ञान देते हैं तो वो कैसे दिया, क्या किया, तो उसके ऊपर हम आते हैं कि कलयुग में जब बहुत हाहाकार हो जाता है, जैसे आज कलयुग में देवी देवता है, पहले तो शिव की पूजा करते थे, फिर धीरे धीरे किसकी पूजा करना शुरू कर दिया, मूर्तियों की पूजा, जो हम ही देवी देवता थे, हमने ही अपनी पूजा की। और कलयुग में आते आते हमने क्या किया, मनुष्य की, पतित मनुष्यों की भी पूजा करना शुरू कर दिया, पानी की पूजा करते, जल तत्व को मानते हैं, या आकाश की पूजा करेंगे, सूरज की पूजा करते हैं, जिनकी बायोग्राफी तो हम बिल्कुल नहीं जानते कि इसकी पूजा करने से क्या मिलेगा, इसका अर्थ भी नहीं जानते। भारत के इतने सारे त्योहार हम मनाते हैं, लेकिन आजकल क्या हो गया है, फैशन। कई बार हम देखते हैं कि रील बनाना है हमको, ब्लॉग बनाने हैं, उसके लिए ये, उसके पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य है ये किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। और जब ऐसे बहुत पतित हो जाते हैं तो मेन रीजन है बॉडी कॉन्शियस, हम अपने आप को भूल गए, हम अपने ऊपर के दिखावे को सवारने में लगे हैं, और वो सवारते सवारते हम इतने ऐसे हो गए कि यहां आप देख रहे हो कलयुग में हमारी हालत क्या है, पेन है, डर है, भय है। आज अच्छा है तो कल पता नहीं क्या होगा, बाहर निकलो तो हम वापस आएंगे कि नहीं वो भी नहीं पता है। आज हम क्रिमिनल एक्ट भी देख रहे, कितने सारे ऐसे हो रहे हैं। तो ये कंटिन्यू अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या होगा, फिर तो क्या होगा, नाश कैसे होगा, नाश कैसे होगा। अगर ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा तो ये दुनिया जीने के लायक रहेगी रहेगी नहीं रहेगी ना। इसीलिए कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में जो आपने इसमें देखा था ना, किसमें, सृष्टि चक्र में, एक छोटा सा युग जो है कि बहुत टाइम कम है। अगर देखेंगे जैसे कहते हैं 12 बजने के लिए कुछ मिनट ही है, मिनट भी नहीं, सेकंड कहेंगे। इतने छोटे युग में परमात्मा इस सृष्टि का परिवर्तन कर रहे, विनाश जरूर होगा। तीन प्रकार से विनाश, एक एटॉमिक वॉर जो इतने सारे अणुबॉम्ब मिसाइल शोपीस तो नहीं है उससे होगा, दूसरा ग्रह युद्ध, आपस में लड़ पड़ेंगे। हम देखते हैं आज भी चाकू लेके घूमते हैं, मारने के लिए टाइम नहीं लगता है। ये तो आज से रिहर्सल देख रहे हैं दुनिया में, इसका भयंकर उग्र रूप जो है देखने में आएगा। तीसरा नेचुरल कैलामिटी जो देख चुके हैं, सुनामी भी देख चुके और इसका भयंकर रूप भी देखेंगे। आज प्रकृति भी हमारे कारण तमो प्रधान है, बेमौसम बारिश, अगर धूप है तो बहुत ही गर्मी होगी, ठंडी है तो बहुत ही ठंडी, बर्फ में लोग मर जाते हैं, धूप में लोग लू लग जाती है, बारिश है तो बाढ़ आ रही है, बह के चले जा रहे हैं। प्रकृति भी अपने कंट्रोल में नहीं है, जहां सतयुग में सत्व प्रधान थे, सात्विक थे, वहां प्रकृति भी सदाबहार। जैसे कल सुना ना कि वहां न छाते की जरूरत थी, न रेनकोट, न स्वेटर, न कुछ, इतना सदाबहार मौसम वहां रहता था, लेकिन आज वो नहीं रहा है। तो ऐसे समय जो हम देखते हैं कि महाभारत और रामायण जो कह रहा है, जो बनाया गया है, बहुत अच्छे से बनाया, लेकिन उसका रूप जो है या उसका काल जो आने वाला समय, क्योंकि ये द्वापर युग में मनुष्य ने बनाया है, लेकिन आने वाले समय की डर दिखा रहे थे कि अपने आप को सुधारो, लेकिन उसके विपरीत ही कलयुग में क्या हो गया, और ही उल्टा हो गया। हमने देखा है कि द्वापर युग में महायुद्ध हुआ, ये महाभारत लड़ाई हुई और उसके बाद नई दुनिया आई, लेकिन द्वापर युग के बाद क्या आता है, कलयुग। तो सतयुग में जहां कृष्ण थे वहां लड़ाई की बात ही नहीं थी, जहां राम थे वहां लड़ाई की बात नहीं थी। शुरू कहा हुआ अधर्म द्वापर में कि हम बॉडी कॉन्शियस में आ गए। हर धर्म में कहा है आदि देव आदि देवी, एडम एव ना? तो ये जो दो पहले मनुष्य थे उन्होंने बहुत अच्छी दुनिया थी, लेकिन कुछ फल खाया, कुछ ऐसा कर्म किया जिससे पतन की ओर गया। तो ये कौन सा फल था, कौन सा ऐसा कर्म था कि जो हम पतन की ओर गए, ये था बॉडी कॉन्शियस कि मैं आत्मा भूल के मैं शरीर हूं, और जिसके कारण हमारे अंदर पांच विकारों की प्रविष्टा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारा हुआ। तो ये जो अगर हम देखेंगे ये तीन प्रकार से जो विनाश है, तो महाभारी महाभारत लड़ाई जो कहा कि कुरुक्षेत्र में हुई थी, क्या कुरुक्षेत्र का मैदान इतना बड़ा है जहां ये पूरा महाभारत लगी होगी? तो ये कुरुक्षेत्र माना परमात्मा हमको कहते हैं कि ये वो युद्ध है कि जहां आपका कर्म है, कुरु माना कर्म, तो जहां हम कर्म कर रहे हैं वहां ही मेरी वो लड़ाई है। आप नीचे देख रहे हैं कि जो महाभारी लड़ाई के समय जो तीन दिन तक गीता ज्ञान दिया, उसके पहले हम ये देखते कि वहां कितने प्रकार के थे, यादव थे यदुवंशी, कौरव थे पांडव थे। अब यादव और आज का हम कहेंगे कि कई ऐसे कंट्रीज है जिनको अपने साइंस का बड़ा घमंड है कि हम अपने साइंस की पावर से हमें जो चाहिए वो हम कर सकते हैं, और बड़े बड़े मिसाइल अनुबॉम ये सारे बनाते जा रहे हैं। अब कहानी देखो, यादों की कहानी अगर आप सभी ने सुनी हो तो शॉर्टकट में समझाती हूं कि दुर्वासा ऋषि सभी को पता है कौन थे, वो क्या थी उनका, किस लिए जाने जाते दुर्वासा ऋषि, बहुत गुस्से वाले, कोई भी सामने आने से डरता था। शास्त्रों में कहानी है कि तुरंत श्राप दे देते थे, उनका श्राप तुरंत ये होता है। इसलिए कभी भी हम बात करते ना कि आपके मुंह से अच्छे वर्ड ही निकालो, ना, कोई भी ऐसे गलत वर्ड नहीं निकालो कि दूसरे को वो बददुआ लग जाए, क्या कहते दुआएं निकालो। लेकिन दुर्वासा ऋषि ऐसे क्रोधी थे कि अगर उनका विपरीत जाएंगे तो तुरंत वो श्राप दे देते थे। तो यादवों का भी कहानी ये है कि जब बचपन में ये लोग खेलपाल कर रहे थे, दूर एक जगह पे दुर्वासा ऋषि तपस्या कर रहे थे। अब हुआ क्या, इन्होंने सोचा कि चलो हम इनको थोड़ा छेड़छाड़ करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो यादव था एक, उसके पेट पे एक मुसल बांध दिया और ऐसे बांधा जैसे वो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, वैसे एकदम पैक करके उसको बांधा और गए उनके पास कि हे तपस्वी, आप इतने महान तपस्वी हो तो बताओ इसके पेट से क्या निकलेगा, क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा? हाँ जा, क्रोध आया। नेचुरली आंखें खोली और जो उन्होंने गुस्सा किया कि तपस्या भंग की, ऊपर से ऐसे मजाक कर रहे मेरे साथ कि बोलो इसमें से बच्चा निकलेगा तो वो लड़का हो गया लड़की, ऐसे कुछ उन्होंने छेड़छाड़ की उनके साथ। तो उन्होंने तुरंत वह श्राप दिया, इसके पेट से जो भी मुसल निकलेगा, उन्होंने सीधा बोला कि जो भी मुसल निकलेगा उससे तुम्हारे कुल का नाश होगा। क्या एक मुसल से नाश हो सकता है? कहानी आगे बढ़ाते हैं तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि दो तीन ऐसे तथ्य उसमें बताए हैं, उस मुसल के उन्होंने टुकड़े टुकड़े किए, जो कहते हैं कि नदी के किनारे गाड़ दिए, किसी ने कहा कि नदी में गिर गए, किसी ने कहा कि समुद्र में फेंके गए, और उसके बाद उसमें से जो एक फल निकला, पेड़ निकला, जिसमें से वो फल निकले उसमें इन्होंने जो खाए उसमें वो टुकड़ों के कारण इनकी मौत हो गई। आपस में लड़ पड़े, किसी ने कहा कि एक बार वो आपस में लड़ पड़े, वही टुकड़े एक दूसरे के ऊपर फेंक मारे और उससे इनके कुल का नाश हो गया, एक मुसल, और उसमें कहा कि इनके कुल का नाश हुआ। उसमें भी कहा नहीं देखो कि वो टुकड़े एक दूसरे के ऊपर फेंकते फेंकते वो एक नदी में जाके गिरा, और कहते हैं कि एक मछुआरे, एक मछली ने उस टुकड़े को निगल लिया, और एक मछुआरे ने वो जब मछली पकड़ी बाजार में बेचा तो एक शिकारी ने वो मछली खरीदी थी और घर पे आके काट के देखा तो वो लोहे का टुकड़ा मिला, और उस लोहे के टुकड़े का उन्होंने क्या किया, बांध बनाया, और वो बांध बनाया और फिर एक दिन शिकार पे गया, कुछ आवाज हुआ, तीर लगा दिया, झाड़ के नीचे श्री कृष्ण बैठे थे, उनके पांव में लगा, कृष्ण की मौत हो गई। बस कहानी वही, यादवों का नाश। सोचने की बात है, क्या ऐसे संभव है कि जिस श्री कृष्ण ने बड़े बड़े असुरों को मारा, बड़ा बड़ा वध किया, एक बाण लगने से उनकी मृत्यु हो सकती है? तो ये मुसल जो वहां उधर महाभारत में दिखा है कि ब्रह्मास्त्र, अग्नेस्त्र जो भी बने हैं वो आज बने हैं ना, तो ये जो हमारे मिसाइल है ब्रह्मास्त्र, ऐसे ही नाम दिए है ना, ये थे नदी किनारे, वो रखे समुद्र के अंदर, ये कोई शोपीस तो नहीं है ना। तो एटॉमिक वॉर का तैयारी हो चुकी है, साइंस चीज बहुत अच्छी है, साइंस को यूज करना भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसको यूज अगर गलत रीति से कर रहे तो वो विध्वंसक ही बनने वाला है। तो ये कलयुग का नाश है, तो उस हिसाब से ये सारी चीजें बनती भी जा रही। साथ साथ अगर हम देखेंगे तो ये कौरव कौन है, दूसरे व्यक्ति कौन आते हैं वहां पे, कौरव। कौरव माना बुराई का प्रतीक, जो कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति एंड प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तो विनश्यन्ति माना क्या, विपरीत हो गए थे वो। तो यहां अगर हम देखेंगे ऐसे ग्रुप है कि जिन्होंने धर्म का यूज गलत रीति से किए, ऐसे वो दुर्योधन है, जिन्होंने शासन का यूज अगर भ्रष्टाचार के लिए किया है, ऐसे दुशासन है, जिन्होंने अपने बच्चों का देखरेख गलत कर रहे हैं तो भी आंख पे पट्टी है, धृतराष्ट्र के और गांधारी के जैसे अंधे होकर बैठे कि उनकी गलतियों को छिपा रहे हैं। और इसलिए इनके नाम भी कैसे थे, दूसरे थे, इसलिए दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र ऐसे नाम कोई रखते भी नहीं है, क्योंकि ये कौरव। और इनकी कहानी भी कैसे बनाते हैं, कि एक अंडा था उसमें से सौ करोड़ और एक कन्या निकली, क्या पॉसिबल है? तो अर्थात भगवान को न मानने वाले, उनकी मत पर न चलने वाले, आज हम जगा रहे कि भाई जागो, टाइम आ गया है। भगवान क्या कह रहा है? हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन उसको कहना नहीं मानते, अपनी मनमत को छोड़ देते हैं। तो ऐसे ये विनाश होता है। इसका एक एग्जांपल, जब युद्ध का न्योता देने के लिए कृष्ण जी के पास गए थे तो दुर्योधन जी पहले आके बैठे थे लेकिन उनके सिरहाने बैठे, और अर्जुन जी कहाँ बैठे? उनके पग के यहाँ पर। तो नेचुरली जब वो सोए थे आंख खुली तो सामने कौन दिखाई देगा? सामने कौन दिखाई देगा? अर्जुन। तो बोला, बोलो पार्थ क्या काम है? तो दुर्योधन तो एकदम ये हो गए कि मैं पहले आया, एक तो सिरहाने बैठे हैं, तो ऐसे बच्चे भी तो है ना, कि उनको कितना भी समझाओ लेकिन वो अपने ही अहंकार में चूर चूर है। लेकिन अर्जुन एक नम्रता का प्रतीक है, जिन्होंने भगवान को अर्जन कर दिया है। बहुत होशियार था, बहुत बुद्धिशाली थे अर्जुन। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले इनको देखा है। फिर उन्होंने कहा कि हम युद्ध का न्योता देने आए हैं। तो उन्होंने कहा, एक तरफ मेरी योक्षुनी सेना, एक तरफ मैं, वो भी निशस्त्र, तुमको चुनना है, तुम क्या करोगे? तुरंत अर्जुन ने कहा कि मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। दुर्योधन जी खुश हो गए, कितने मेरे को तो इससे क्या लेना देना है, वो भी लड़ने वाला नहीं तो मैं क्या करूं इसका, मुझे तो चाहिए सेना। आज अगर हम अपने लाइफ का जब डिसीजन लेते हैं तो जब हमको कहा जाता है कि तुम ये करो, तुम्हें ये सही रास्ते पे चलना है, लोग क्या कर रहे हैं? कंपटीशन इतनी बढ़ गई, ईर्ष्याएं इतनी बढ़ गई है, अर्थात एक दूसरे को मारने में भी कमी नहीं करते हैं। आज माँ बाप को भी मारने की कमी नहीं करते, पैसा चाहिए। एक देख रहे हैं ना कि बेटी ने माँ बाप को मार डाला, क्यों? क्योंकि सिर्फ धन चाहिए था। एक भाई भाई का खून कर देता है, क्यों? क्योंकि ये तो आने वाला जो ऐसा समय है कि सिर्फ धन के लिए नहीं, रोटी के लिए भी मारा मारी होगी। क्या कह रहे हैं? रोटी के लिए, क्योंकि समय ऐसा आएगा। आज जो पानी हम पी रहे हैं वो भी खरीद के लेना पड़ रहा है। पानी जैसी अत्यावश्यक चीजें, जो कहा ना कि ये कलयुग की निशानी है कि पानी खरीदना पड़ेगा, बेटी अपना वर खुद चुनेगी, बेटी के कमाई पर माँ बाप को चलना पड़ा, मैंने कलयुग की बहुत सारी ऐसी निशानियां बता दी है कि बहुत सारे ऐसी चीजें कहेंगे। तब कहा जाता है कि रामचंद्र कहे गए सिया से कि ऐसा भी दिन आएगा कि हंस क्या करेगा, दाना और कौवा मोती, वरना सब कुछ उल्टा उटल उलट पुलट होता रहेगा। अब ये हो गए कौरव, जिन्होंने अपना विनाश खुद ही चुना कि जो बुराई के रास्ते पर चलना चाहते है। पांडव कौन? तो जो ऊपर दिखाया है कि ये जो युद्ध है उसमें अगर देखेंगे कि तीन दिन तक लगातार ये जो गीता सुनाई गई, और वो गीता में कहा है कि जब अर्जुन रेडी नहीं था तो कृष्ण जी ने उनको गीता सुनाई, उसके बाद वो रेडी हुए, कहा गया है कि वो क्या कह रहा है, तो ये तो मेरे अपने ही हैं, इनको क्या मारना है, इनको क्यों ये करना है। ये सोचने की बात है कि आज के इस कलयुग में भी हमारी जो न्याय व्यवस्था है, क्या तुरंत आपको न्याय मिलता है? एक है अच्छे लोग, एक है बुरे लोग। क्या अच्छे लोगों को न्याय दिया कि तुम बुरे लोगों को मार सकते हो? दिया है ऐसा किसी ने? अगर कुछ गलत भी होता है तो कितने सारे केस के ऊपर केस चलते हैं, तब जाके उस मुजरिम को सजा मिले। क्या भगवान उस समय कहेगा कि तुम ये विध्वंसक युद्ध करो, क्या तुम इसको मारो? सोचने की बात है। आज भी अगर हम किसी ने गलत किया उसको थप्पड़ मारेंगे, वो हमारे ऊपर केस करेगा, उसका केस चलता रहेगा, उसको सिद्ध करने में ही कितना टाइम जाता है। हालांकि जब पता होता है कि ये इसने किया है, लेकिन न्याय उसको तुरंत नहीं मिल रहा है। तो यहाँ जो सामने गलत जो कौरव सेना थी, और भगवान उसको कहेगा कि तुम ये युद्ध करो, तुम इसको मारो, तुम इसको ये करो, सोचने की बात ही है। और गीता अगर पढ़ेंगे, हर 8-10 लाइन के बाद लिखा है, काम महाशत्रु है, क्रोध अग्नि है, लालच बुरा है, ये हर एक चीज वहां लिखे, तो यहां युद्ध में ये सारी चीजें क्यों बताई गई है, ये सारी चीजें क्यों वहां पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ये वो विध्वंसक युद्ध नहीं है, तो ये वो वाला युद्ध नहीं है कि जहां परमात्मा कहेंगे कि तुम युद्ध करो मैं तुम्हारे साथ हूं। तो यहां अगर आप देखेंगे झाड़ के सबसे ऊपर खड़ा है वो ब्रह्मा। ये कौन सा युद्ध है वो बता रहे कि देखा ना कि सबसे ऊपर कौन खड़ा है, ब्रह्मा। तो झाड़ को अगर जब जड़जड़ीभूत हो जाता है, अज्ञानता बढ़ जाती है, अधर्म बढ़ता है, तो उस अधर्म का जब कहा स्टार्टिंग में सुना ना वो मंत्र, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होगी, पापाचार बढ़ेगा, तब यहां आकर मैं सत्य धर्म स्थापन करूंगा। द्वापर से शुरुआत हो गई थी, कलयुग में बहुत अति हो जाता है, तो कलयुग की बहुत सारी निशानियां देख लो। एक पिता की दृष्टि बेटी पर कुरुवृत्ति हो जाती, इससे अधम पाप और क्या देखना है। तुरंत खून हो जाता है, जैसे आज बॉम्बे में देखा कि कुछ 15-20 दिन पहले कुछ छोटी सी बात के लिए बहस, उस लड़के ने उस लड़के का खून कर दिया। भरी ट्रेन में कोई कुछ नहीं कर सका, कोई उसको बचा भी नहीं सका। और ऐसे तो कई चीजें यहां घटनाएं घट रही है। धर्म के नाम पर हम कितना लूटते जा रहे हैं। धर्म मतलब धारणा, लेकिन वो धारणा बिल्कुल नहीं रही है। और जब ऐसे अति में अति हो जाता है, आज बदला लेने की भावना कितनी जागृत हो गई है। तो ये जो कलयुग में परमात्मा जब आते हैं, तो कहा ना कि सारथी कृष्ण कौन था, उनका सारथी। तो जब ब्रह्मा बाबा है, जिनका जो ये तन है वो क्या है, रथ, और उनकी आत्मा जो थी वो कौन है, रथी। और उस रथी के बाजू में जब भगवान आते हैं, परमपिता परमात्मा शिव, क्योंकि उसमें क्लियर है कि हे अर्जुन, मैं किसी साधारण तन का आधार लेके, मैं किसी माता के गर्भ से नहीं, क्लियर है उसमें, मैं किसी साधारण वृद्ध तन का आधार लेकर एक सत्य धर्म की स्थापना करूंगा। और जब परमात्मा उसके अंदर आते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, उस रथी के सारथी। और फिर आकर वो हमको कौन सा महायुद्ध सिखा रहे हैं कि जो बाजू में दिखे हैं अकराल विकराल राक्षस के रूप में, कौन है ये, मेरे ही अंदर जो ये पांच भूत सवार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसके अलावा ईर्ष्या द्वेष घृणा, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर मुझे विजय कैसे पानी है, परमात्मा आकर हमको सिखाते। तब कहा कि कुरुक्षेत्र माना मेरा कर्म क्षेत्र, जहां हम कर्म कर रहे वहां क्या हमको क्रोध नहीं आ रहा है, वहां लालच नहीं आ रही है, और उसी के कारण हम कहां कहां से गलत रास्ते लेकर बिजनेस को बढ़ा रहे, गलत रास्ते लेकर जॉब पे हम चल रहे हैं, कितना सारा गलत हो रहा है, अहंकार आ रहा है, ईर्ष्या आ रही है, एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे पड़े हैं। तो ये सब क्या है, आसुरी संस्कार। तो आसुरी वृत्ति पर विजय पाने के लिए तो परमात्मा हमको ऐसे पांच पांडव बनाता है। तो ये पांच पांडव कौन, तो पहला सदैव, जो सहयोग देवे। क्या सहयोग देंगे हम परमात्मा को, सदैव जिन्होंने सहयोग दिया, क्या सहयोग चाहिए, क्या सहयोग देंगे परमात्मा को, बताइए, देंगे या नहीं देंगे वो बताइए, देंगे, हाथ उठाइए। अच्छा, धीरे से, बड़ा हाथ नहीं उठ सकता कि हम पूरा सहयोग देंगे। तो क्या सहयोग चाहिए उनको, सदाचार। तो उनको ये सहयोग चाहिए कि ये 24 घंटे में जो हमारा 24 घंटा चल रहा है ना, उसका एक घंटा आपका दे सकते हैं, दे सकते हैं, अब हाथ नहीं उठ रहे हैं, दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हम देते हैं तो मेरा भला हो रहा है, अर्थात हमारा खुद का ही भला होता है। तो वो एक घंटा क्या चाहिए, या तो आप सेंटर पे जाओ, या जहां पर भी हो उसके कहे गए महावाक्यों को अपने अंदर धारण करने की कोशिश करो, अच्छे गुणों को धारण करो, बुराइयों को त्यागो। इतना तो सहयोग हम दे सकते हैं कि नहीं। और इससे हम अपने आप को ही चेक करें कि एक सुकून जो हैप्पी लाइफ है हम वो जी सकते हैं, कि बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत सारी बातें आएंगी, क्योंकि जब हम प्रतिज्ञा करते हैं ना तो परीक्षा तो होनी है। जब मैं एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में जाती हूँ ना, क्या वो पार्टी मेरे को ठीक से जीने देगी? ठीक से जीने देगी नहीं ना। तो जब हम बुराइयों को छोड़ते हैं ना, जब मुझे गुस्सा नहीं करना है, जब मुझे मोह नहीं रखना है, मुझे खाने का लालच है तो मुझे वो नहीं करना है, जब हम वो प्रतिज्ञा करते हैं ना, तो वही चीज बार बार आती है। तो मेन हमने यहाँ क्या सीखा, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से ही हम विश्व को परिवर्तन कर सकते। तो पहली शुरुआत हम खुद के ऊपर से करेंगे। तो परमात्मा को जो सहयोग देगा अर्थात इस महान कार्य में, तो सहदेव माना सहयोग देने वाला। अपने आप को सहदेव के ऊपर रखो कि मैं वो सहदेव हूँ कि परमात्मा के इस कार्य में मैं सहयोग करने वाला हूँ, और सहयोग करते करते मैंने उस परमात्मा के गुणों की नकल की। क्या करना है मुझे? नकल करना है। जब आप सेंटर पे जाएंगे, जब आप सुन रहे थे, कल भी आपने जब हिस्ट्री सुनी तो मम्मा, हमारे मम्मा है, बाबा है, हमारी बड़ी दादियां हैं, सबकी कहानियां आपने सुनी होंगी कि कितनी सारी विशेषताएं थी इनके अंदर। और परमात्मा जो है ही गुणों का भंडार, तो जब हम उनके गुणों की नकल करते हैं ना, तब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। जब हम जो गुणों, जैसे वो शक्ति के गुण है, ज्ञान का गुण है, समझ मिलती है, तब जाके जब परिस्थिति आते हैं तो उस समय हम अपने आप को जब परमात्मा को अर्पण करते हैं, तो ऐसे अर्जुन अर्थात अर्जुन कि जिन्होंने परमात्मा के हर डायरेक्शन को फॉलो किया, तो ऐसे फॉलो करने वाले जो भगवान कहे और मैंने किया। अब तक हमने अपनी मनमत यूज किया या परमत। मनमत माना क्या, करना था ये अच्छी चीज लेकिन किसी ने कहा ये करो वो करो, परमात्मा कह रहा है कि आप सही राह पर चलो, लोगों ने कहा कि ये तो चलता ही रहता, ये कोई उम्र है, ये कोई ऐसा है। आध्यात्मिकता माना ये नहीं कि एक पर्टिकुलर उम्र के बाद ही हमको ये करना है, नहीं। आध्यात्मिकता मुझे एक सही दिशा सिखाती है कि मुझे किस रास्ते पे चलना है, कहाँ चलना है, ये सारी चीजें हैं। तो ये आध्यात्मिकता के बल से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अर्जुन ने क्या किया, जो डायरेक्शन मिला वो किया। और उसके बाद आते हैं भीम, शक्तिशाली। जब ये सारे गुण हमारे अंदर आते हैं तो कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो बाहुबल नहीं, मनोबल। बाहुबल यूज करना ही नहीं हमको, कहीं हिंसा करनी ही नहीं है, तो इस मनोबल से हमको क्या करना है, पूरी परिस्थिति हर चीज पर विजय पानी है। और फिर हम आते हैं युधिष्ठिर, स्थिरता। आज है लाइफ में है, आप कहेंगे यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, कल पता चलेगा जब जाएंगे कारोबार में, घर में, तो पता चलेगा कि कितनी स्थिरता हमारे अंदर आई है। तो युधिष्ठिर, ये पांच पांडव जो सत्य का प्रतीक है युधिष्ठिर, के अपने सत्य को उसने छोड़ा नहीं, हर पल उसी के ऊपर कायम रहा। तो ये पांच पांडव अर्थात परमात्मा के जो राह पर चलेंगे गिनती के हैं। आज इस दुनिया में अगर देखो, कौरव माना जो बुराई का प्रतीक है बहुत सारे हैं, लेकिन पांच पांडव गिन सकते बहुत कम है। तो वो समय आ गया है कि परमात्मा जो है ये अहिंसक युद्ध हमको सिखा रहे, कि कोई भी प्रकार की हमको वो हिंसा नहीं करनी है। तो ये महाभारी लड़ाई यही इधर ही हमारे समक्ष है, जो मेरे ही साथ कभी भी हो सकती है। बस उस काम विकार पर विजय पाना है, उस क्रोध पर विजय पाना है, वो अहंकार है, ये ईर्ष्या है, ये द्वेष है, नफरत है, घृणा है, बहुत सारी चीज है, उसके ऊपर मुझे क्या करना है। बोलना तो बहुत आसान है ना, बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके ऊपर विजय पाने के लिए मुझे क्या चाहिए, वो बल। कौन देगा वो? परमात्मा, जो देखा मेडिटेशन में कि बहुत इजीली चलते फिरते आप बात कर रहे हो किसी से तो भी उसके साथ वो कनेक्ट हो सकते हैं, बस आपकी शुभ भावना, शुभ कामना उस आत्मा के प्रति जिससे बात आप कर रहे हो। अब यहां हम देख रहे हैं रावण, रावण का चित्र दिख रहा है सभी को, सालों साल उसको जला रहे हैं ना, मरा मरा कौन है ये रावण? तो 10 सिर वाला तो उसके बच्चे भी तो वैसे होने चाहिए थे, कोई आज दिन तक नहीं दिखा रावण के अलावा कितने सर, चलो 10 ने तो एक दो तो एक्स्ट्रा होने चाहिए थे। तो ये रावण माना है उसको जो दिए हैं 10 सिर, तो रावण आज सिर्फ एक मनुष्य अर्थात नर नहीं है, तो ये 5 विकार नारी के, 5 विकार नर के अंदर है, तो ये सारे सृष्टि के ऊपर आज रावण का राज है, सिर्फ एक श्रीलंका नहीं है, वो सोने की नगरी थी ये पूरा भारत, लेकिन आज वो क्या बन गई है, लंका, अर्थात जहां रावण का ये है। तो ये रामायण भी देखो कितना सुंदर है कि क्यों सीता का अपहरण हुआ, क्यों ये हुआ, एक तो जो आत्मा की प्यूरिटी है वो उसके ऊपर देखिए, सीता को मर्यादा दी थी, पहला उसको लालच आ गया कि मुझे वो सोने का ये चाहिए, फिर उसको मर्यादा दी तो उसने वो भी मर्यादा का उल्लंघन किया, तो ये सीता वो सीता नहीं है, ये हम सब आत्मा रूपी सीता, ध्यान से सुनिए कि क्या है, ये हम सब आत्मा रूपी सीता की कहानी है, जो हम बॉडी कॉन्शियस में आ गए द्वापर में, लालच काम क्रोध में आ गए, जो मर्यादा थी उसका उल्लंघन किया, वही ये 5 विकार रावण ने हमको उसके जंजीरों में बांध दिया, और ये इतनी बड़ी लंका जहां हम दुखी ही होते गए, दुखी ही होते गए, दुखी ही होते गए, तब वो राम कौन, परमपिता परमात्मा शिव राम आकर हमको इन 5 विकार बुराइयों से हमको छुड़ाते हैं। तो ये जो रामायण है, महाभारत है, ये अभी इसी समय है, ये और कहीं हुआ नहीं था, इधर ही चल रहा है। अगर आप देखो बहुत सारे शकुनी मिलेंगे, एक शकुनी नहीं है, बहुत सारी द्रौपदियां मिलेंगी कि भर रास्ते में उनका चीरहरण हो रहा है, लोग देखने वाले देखते ही रह जाते हैं, बहुत सारी सीताएं जिनको चुरा के लेके जा रहे हैं, बहुत सारी मंथराएं मिलेंगी कि कान भर रही है, ये एक की बात नहीं है, ये कलयुग की निशानी है, यहां ही इसी समय हो रहा है। राक्षस और हम क्या फर्क है, क्या फर्क है, एक तरफ राक्षस है, एक तरफ मैं हूं और देवता है, तीनों में क्या क्या फर्क है बताइए, है या नहीं, चलो देवताओं को बाद में लेते हैं, राक्षस और हमारे अंदर क्या फर्क है बोलो, नहीं है कोई फर्क, हाँ जी, मैंने तो बोला ही नहीं राक्षस है आप, मैंने कहा फर्क क्या है दोनों में, हमने तो बोला ही नहीं कि आप राक्षस हो, हमने क्या कहा दोनों में क्या फर्क है, आज हम ह्यूमन है, अच्छा राक्षसों को नहीं है, अच्छा हमको अच्छे और बुरे का पहचान है, तो भी हम बुरा क्यों कर रहे हैं, फिर कई बार हम गलती से किसी को मार देते हैं, कई बार गलती से किसी को कुछ बोल देते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ईर्ष्या, अगर मेरे इस बेटे से आगे कोई जा रहा है तो तू क्यों नहीं कर रहा है, उसको तो कितने सारे हम डायरेक्शन दे रहे हैं। देखो इंसान और राक्षस, राक्षस बहुत विकरार रूप दिखाए हैं, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े विकरार भयंकर दिखाते हैं, और कोई ऐसे राक्षस है नहीं, ये राक्षसी वृत्ति ही इंसान के अंदर है, क्या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसके अलावा ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत क्या नहीं है हमारे अंदर, यही तो राक्षस के अवगुण है सारे, खाली हमारे चेहरे थोड़े ठीक ठाक है, अच्छे दिख रहे मनुष्य की तरह, लेकिन वृत्ति को चेंज करना है, अब जो राक्षसी वृत्ति है ना उसी को चेंज करने परमात्मा इस धरती पर आए, तो वो देवता और हमारे में फर्क क्या रहा है कि वो जो उनकी दिव्य गुण है, वो जो पवित्रता है, वो जो उनके अंदर सहयोग करने की भावना है वह आज हमारे अंदर नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम हमने कितना इजीली कहा, आज हमारा ही कुटुंब कुटुंब नहीं रहा है तो वसुधैव कुटुंबकम कैसे कह सकते हैं। तो वही कुटुंब को एक सुखी बनाना, पूरे विश्व का परिवर्तन इस समय हो रहा है। तो ये ग्रह युद्ध, जैसे कहा ना कि एटॉमिक वॉर सारी तैयारी हो चुकी है, ग्रह युद्ध अर्थात हम देख रहे कि आपस में कैसे लड़ रहे हैं एक दूसरे को ये करने के लिए। समय ऐसा आएगा कि पानी तक नहीं मिलेगा, देखा होगा बारिश इतनी आती है सब कुछ होता है लेकिन पीने के लिए पानी नहीं, चारों ओर आपका पानी रहेगा लेकिन वो पीने के लायक नहीं होगा। ये क्लियर लिखा है कि एक रोटी के लिए हजार लोगों में एक रोटी बनेगी, उस रोटी को छीनने के लिए आपस में लड़ पड़ेंगे, ये मुसीबत आने वाली है, ऐसी स्थिति आएगी क्योंकि ये विनाश का समय है। तब परमात्मा कहते हैं कि जो उसके इस विनाश काले प्रीत बुद्धि है विजयंती। तो विजयंती मतलब क्या कि मुझे इन बुराइयों के ऊपर विजय पाना है तो इतना सहज भी नहीं है लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। बस एक ही उन्होंने कहा कि त्याग करो बुराइयों का और जो वो तपस्या अर्थात जो वो डायरेक्शन देते जा रहे हैं उसको अपने अंदर भरने की कोशिश करना है। तो ये जो कल्प वृक्ष है, जैसे कहा ना कि ये साइकिल रिपीट हो रहा है, वैसे ये कल्प वृक्ष बीज नया 5000 वर्ष के बाद अगेन लगता है, अगेन वो झाड़ खिलेगा, अगेन वो हम सतयुगी त्रेतायुगी आत्माएं और वापस झाड़ कलयुग के जड़ जड़ी भूत को, वहां ब्रह्मा खड़ा है, वापस वो नया कलम शुरू होता है। तो एटॉमिक वॉर जो ये है हमारे यूरोपवासी यादव माना कि जिन्होंने आपस में लड़कर मरना है कि जो भी चीजें बनी है आज ये चल ही रहा है छोटे छोटे युद्ध, ये कब महायुद्ध में परिवर्तन हो जाएगा बोल नहीं सकते। इंसान को जब अटैक आता है ना पहले इसमें बच जाएगा, दूसरे में भी बच जाएगा, तीसरे में डॉक्टर बोलेंगे नो चांस। सेम वही सृष्टि का हालत, पहला महायुद्ध हो चुका है, दूसरा आज भी अगर हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो अनुबॉम्ब गिराए थे आज भी उस बॉम्ब का असर है, बच्चे विकलांग पैदा होते, इतना जहरीला था वो। और उसके बाद थर्ड महायुद्ध की तैयारी हम देख रहे हैं चल रहा है, कोई पीछे हटने के लिए रेडी नहीं है, घमंड है हमारे पास, ये हम ये यूज करेंगे, हम वो यूज करेंगे, उन्होंने भी ब्रह्मास्त्र यही नाम दिए है ना, मिसाइल है ना, कब आके वो गिरेंगे पता ही नहीं चलेगा। और एक तरफ नेचुरल कैलामिटीज, वो नेचर भी हमको अपना जलवा दिखा रही है। तो ऐसे बीच मुझे कैसे स्थिर रहना है, ये सारे हाहाकार तो होते रहेंगे। तब वो पहला लेसन परमात्मा कहते, तब कहा ना कि ये जो गीता ज्ञान है इस समय आपके इस कर्म क्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र में स्वयं परम पिता परमात्मा शिव इस समय हमको ये दे रहे हैं कि तुम जब कर्म कर रहे हो ना क्रोध आएगा, विजय पाओ उसके ऊपर, शांत रहो। अहंकार आएगा, नम्रता का गुण ले लो, नम्र चित बनो, वो ईगो आपका धीरे धीरे कम होगा। तो चीजें मुझे परमात्मा छोड़ने के लिए नहीं कह रहे क्योंकि देना बहुत कठिन होता है लेकिन लेना इजी होता है। कोई आपको अगर गिफ्ट देता है ले लेते हो मना नहीं करते ना, खुशी से ले लेते हो, प्रेजेंट मिल रहा है, लेकिन जब आपको देना है तो जब देना है तो तब तो उसका पूरा भाव निकालेंगे क्या दूर क्या नहीं, सारी चीजें होती है। तो सेम वे कि जब बुराई लेनी थी तो हमने फटाफट ले ली है लेकिन जब छोड़ना है तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है मत छोड़ो। आज एक पानी का मटका है, खाली है, उसमें हवा भरी है, उस हवा को निकालना है तो मटका उल्टा करूं निकलेगी तो क्या करना है, पानी भरा तो मैंने निकाला कुछ भी नहीं ना, मैं क्या कर रही हूं उसमें अंदर भर रही हूं। तो जैसे भरा ऑटोमेटिक हवा निकल गई। तो वैसे अपने आप को चेक करें कि हमारे अंदर कई सारे अगर अवगुण है उनको चीतो नहीं, उनको सोचो भी नहीं, उसके बदले में उसके अपोजिट जो अच्छे अच्छे गुण है वो लो। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं शांति का गुण ले लू, वो गुस्सा ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा, मुझे अहंकार में नम्रता का गुण ले लेती हूँ वो ऑटोमेटिक कम होता जाएगा, मुझे बहुत ईर्ष्या है उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखना शुरू करूँ, ईर्ष्या हमारी कम हो जाएगी, नफरत कम हो जाएगी। ये सबसे बड़ी अपनी आदत डाल के रखना है कि सुबह उठो हरेक के प्रति शुभ भावना शुभकामना, फिर कोई कैसे भी हो। तो वो जो हमारे संस्कारों की टकराव होती है ना कई बार, तो वो धीरे धीरे कम होते होते निकल ही जाएंगे। तब हम ऐसे देवी देवता बन सकते हैं कि जहाँ सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसी ये दुनिया हमको लानी है। तो परमात्मा हमको यही सिखाते कि इस दुनिया में चलना है, ठीक है। तो एकदम रिलैक्स होके बैठेंगे, जो थॉट्स दिए जाएंगे उस हिसाब से मेडिटेशन हम करेंगे, और एकदम रिलैक्स। जब यहाँ से हम जा रहे हैं तो ये आपका अपना ही घर है, तो ऐसा नहीं कि आज जाना है, लेकिन एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत, कुछ तो हमारा अंदर वो परिवर्तन लाना है कि आज हम जो लोग छोड़ के आए थे, जो सिचुएशन से हम डर के आए थे कि इनसे मुझे निपटना है, ये सारी चीजें निकाल ली हैं, वो वैसे ही रहेगी, लेकिन परिवर्तन आज मेरा होगा कि मैं अपना नजरिया चेंज करूंगा। कि आज तक हम उनको इस नजर से देख रहे थे, आज मेरी नजर क्या हो गई, बहुत पॉजिटिव, और हरेक के प्रति वही नजर रहेगी। तो ये चश्मा ही कौन सा पहन के जाएंगे, पॉजिटिव, अर्थात हरेक को मैं उस आत्मिक दृष्टि से देखूंगा। तो आत्मा के ओरिजिनल गुण कौन से, शांति आनंद प्रेम पवित्रता शक्ति ज्ञान, ये आत्मा के ओरिजिनल गुण है, लेकिन वो धीरे धीरे उसने बाहर से जो अवगुण लिया है उसके कारण वो व्यक्ति ऐसे बना है। तो मेन मुझे किसको देखना है, नकली चीज या ओरिजिनल चीज को, ओरिजिनल को देखना है। तो हरेक को हम किस नजर से देखेंगे कि नहीं, इसकी आत्मा तो बहुत अच्छी है, बहुत प्योर है, बहुत सुंदर है, आत्मा को देखना है। अब तक आप ब्यूटी पार्लर में जाते होंगे, लेकिन ये आत्मा के ब्यूटी पार्लर कौन, आत्मा को कौन निखार रहा है, परमात्मा ही निखार रहे हैं ना। तो हमको वो चेंज करना है कि अपने अंदर का जो कालापन था, जो कमजोरी थी, वो निकल जाएगी और एक अच्छाई अपने अंदर वो धारण करेंगे, ठीक है। तो एकदम रिलैक्स होके बैठिए, भले आंखें बंद, और थोड़े समय के लिए जो भी आवाज है मन में, जो भी बातें हैं, उनको एक साइड रख देते हैं। अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इस शरीर में, इस दो भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई मैं आत्मा, अपने आप को एकदम डिटैच होके देखे कि इस शरीर का आधार लेकर मैं आत्मा अपना पार्ट प्ले करती हूँ, इन आंखों से देखती हूँ, मुख से बोलती हूँ, कानों से सुनती हूँ, अपने इन हाथों से कर्म कर रही हूँ, ये सारी कर्मेंद्रियां मेरे कंट्रोल में है, मैं आत्मा इस शरीर का मालिक, उसी प्रकार मेरी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मन बुद्धि संस्कार व कुछ आत्मा के गुण, मैं शांत स्वरूप, आनंद से भरपूर, सर्व गुणों से भरपूर, अब थोड़े समय के लिए हम इस जड़ शरीर को यही छोड़ के मैं आत्मा अपने इस लाइट के शरीर के साथ इस तन से निकल रही हूं। अपने आप को डिटैच महसूस कीजिए। हम इस हॉल से बाहर आसमान में एक सूक्ष्म शरीर जो फरिश्ते के रूप में है महसूस कीजिए। हम आसमान से भी पार, चांद सितारों से भी पार, ऐसी बादलों की दुनिया जिसे सूक्ष्म वतन कहते हैं, एक फरिश्तों का वर्ल्ड, एक परियों की दुनिया, जहां सफेद प्रकाश ही प्रकाश है। सामने ब्रह्मा बाबा को देखिए, जिनके तन में, जिनके सूक्ष्म शरीर में परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। उनके सम्मुख जाकर उस पाप दादा को हम गले लगाते हैं। कितना बड़ा भाग्य कि भगवान से हम गले लग रहे, उनकी बाहों में है, जिससे मुझ में सर्व शक्तियां आ गई। ये वो पल है जिसमें मुझे परमात्मा सर्व शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। मैं अपने उस परम पिता से मिलन मना रही हूं। ओह शिव बाबा, आप कितने मीठे प्यारे हो, आपसे मिलकर हमारा जीवन धन्य धन्य हो गया। ये वो पल है जहां मैं आपको सर्वस्व अर्पण हूं। जो मेरी लाइफ है आज से आप ही के डायरेक्शन अनुसार चलूंगी। मैं अपने अंदर के सारे विषय विकारों को आपको अर्पण करती हूं। परमात्मा से वो शक्ति लेकर मैं फरिश्ता वापस नीचे अपने पाठ को पूरा करने नीचे आती हूं। मैं इस पृथ्वी लोक में प्रवेश करती हूँ, मैं इस हॉल में, इस शरीर में दो भ्रुकुटी के बीच महसूस कीजिए, मेरे चारों ओर जैसे लाइट का उरा मेरे मस्तक के एक फुट ऊपर, जैसे परम पिता परमात्मा शिव निराकार स्वरूप में उनकी किरणें मेरे मस्तक से निकल मेरे हाथ तथा पांव के अंगूठे तक प्रकंपन हो रही है। मेरा एक एक अंग रिलैक्स शांत शीतल होता जा रहा है। मेरे चारों ओर एक पवित्रता के वाइब्रेशन। हम अपने लाइफ में अब उन लोगों को स्मृति में लाए जो मेरे से नाराज है। एक एक को विजुअलाइज कीजिए। अपने सम्मुख जिन जिन को ला रहे हैं कि जो मेरे से नाराज है, आज उनसे हम तहे दिल से माफी मांगते हैं कि मेरे से जाने अनजाने में जो भी भूल हुई, मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। जो भी गिले शिकवे थे आज हम यही खत्म करते हैं। हम उन लोगों को सामने लाए जिनसे हम नाराज हैं और उन सब को बहुत बड़े दिल से माफ कर लो। किसी के भी प्रति कोई दुरावा नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, पूरा क्लियर। आज मुझ आत्मा के अंदर जो भी कचरा भरा है उसको मैं खाली कर रही हूं। सिर्फ यह शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ विचार ही चलेंगे। मैं आने वाली दुनिया सतयुगी देवी देवता बनने जा रही हूं, तो वही मेरी दृष्टि, पवित्र दृष्टि, मुख कमल अर्थात शुद्ध बोल, मधुर बोल निकलेंगे, चरण कमल जो मेरे आचार विचार, जो मेरी एक्टिविटी है, वो कमल के समान पवित्र रहेंगे, श्रेष्ठ कर्म रहेंगे। शिव बाबा, आपके इस घर में मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत आनंद मिला, मैं भरपूर हूं। जो प्राप्ति मुझे हुई है जाकर मुझे औरों को भी करानी है। आपका जो हाथ और साथ मिला है वो लास्ट तक हमेशा रहेगा। ओम शांति। तो आज से क्या करेंगे, क्या करेंगे? लक्ष्य मिला है ना, एक होता है ना कि जब बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं तो उनको लक्ष्य दिया जाता है, एम ऑब्जेक्ट दी जाती है। आज हम बच्चों को पूछते हैं क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है। अब आप एक विश्वविद्यालय में थे और वहां जाके भी उस विद्यालय में जाएंगे पढ़ाई, क्योंकि ये ऐसा विद्यालय जहां बच्चे बड़े बुजुर्ग सब आते हैं। तो रोज वहां जाना और ये 7 दिन का कोर्स और डिटेल में वहां जरूर करना, ताकि और क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या है लाइफ और कैसे अब जीना है। और जो लक्ष्य मिला है कि ऐसे लक्ष्मी नारायण, कहा ना कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण कहलाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी। तो ऐसी सुंदर दुनिया में जाने के लिए परमात्मा ने क्या कहा, मैं साथ हूँ। जो कर्म क्षेत्र है, जहाँ युद्ध स्थल पे है, वो हमेशा उसको सारथी बनाकर चलो, तो उन 5 विकार रावण से हम हमेशा बचे रहेंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है? बाकी का तो वहाँ सेंटर पे जाके आपको दीदियाँ देगी ही, क्लियर करेगी। ओके, ओम शांति।